ओम शांति। आदरणीय संतोष भाई जी अभी हम सबके लिए क्लास करेंगे, तो सभी बैठे रहेंगे। संतोष भाई जी बॉम्बे कल्याण सेंटर के रहने वाले हैं और वो साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इंडोनेशिया में जो साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भाग लिया था, तो वहां उन्होंने जो भी सेवाएं की हैं तो उसका समाचार भी सुनाएंगे और विज्ञान के द्वारा विश्व परिवर्तन में सहयोग कैसे है तो उसके बारे में वो लेक्चर भी कराएंगे। तो सभी बैठे रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। देखिए, बाबा ने बोला है कि अंत की जो सेवा है वो विज्ञान द्वारा ही होना है, क्योंकि जगदीश भाई जी जो अपने जिनको सच्चे संजय कहा गया है, बाबा ने उपाधि दी थी संजय जी की, तो उन्होंने बोला था कि जब वेस्टर्न के साइंटिस्ट लोग बोलेंगे कि ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान सुना रही है ये अंतिम सत्य है और ये ऐसा ही होने वाला है, तब जाके भारत के कुंभकर्ण जागेंगे और सारा संसार जाग जाएगा। देखिए, आज तक हमने साधु संतों की, महात्माओं की और राजनीति लोगों की, सबकी सेवा की, लेकिन आज भी देखा जाए तो आज तक साइंटिस्ट लोगों की सेवा नहीं हुई है। और बाबा का ज्ञान इतना सर्वोच्च ज्ञान है कि वो सर्वोच्च ज्ञान से हर एक आत्मा संसार की संतुष्ट होना ही है, तो ये अंतिम सेवा है। क्योंकि देखिए, साइंटिस्ट लोगों का रोल बहुत बड़ा है। ये सारा जो जितने भी युग देखेंगे हम, सतयुग से लेके कलयुग के अंत तक, आज भी जो जितनी भी हम सेवाएं कर रहे हैं तो अंत की जो सेवा है, साइंटिस्ट लोगों का रोल बहुत बड़ा है इसमें, तो इनकी भी सेवा होनी है। और सबसे डिफिकल्ट सेवा यही है, साइंटिस्ट लोगों को मनाना, ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि वो लोग तो प्रूफ मांगते हैं हर एक चीज का। अगर आप बोलते गॉड तो उसको प्रूफ चाहिए हर एक चीज का, आत्मा का प्रूफ चाहिए उनको, तब जाके ये लोग मानते हैं। ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी हमारी ऐसी लड़ाई रहेंगी कि जिसमें ये इसको सफल कर पाना, ये बाबा करवाएगा। तो जगदीश भाई जी से प्रेरणा लेके, जैसे जगदीश भाई जी ने इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, इसमें ऐसे डायरेक्शन दिए हैं, उसी के आधार पे एक पेपर बनवाया था जो इंडोनेशिया में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पे सारे संसार के साइंटिस्ट आए थे और वहां पे ये पेपर प्रेजेंट करने का एक मौका मिला। ऐसे समझे कि बाबा लेके गए। सबसे पहले तो अपना अनुभव सुनाता हूं कि बाबा कैसे लेके गए मुझे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो बड़ा अनुभव ही है। सबसे जैसे पेपर सिलेक्ट हुआ तो पहले तो भाई जी से बहुत इंस्पिरेशन आता था कि ये करना है, क्योंकि भाई जी ने बोला था कि कोई तो भी ऐसा आ गया है जो ये सेवाओं को करे, तो उनको तो पता था कि उनको ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन उन्होंने बोल के रखा था कि कोई तो भी आए, तो ऐसे अंदर से लगता था कि क्यों ना हम बाबा को ऐसे प्रत्यक्ष करें साइंस के द्वारा। तो करण करावनार तो बाबा ही है, तो बाबा ही मदद करता है, तो बाबा ने ही हर पल मदद की है। उसका अनुभव संक्षिप्त में बताता हूं। जब पेपर सिलेक्ट हुआ था, कम से कम इंडोनेशिया जाने के लिए 1 लाख रुपए खर्चा आने वाला था, जो तो एक मैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, इतना ज्यादा तो खर्चा खुद होके नहीं कर पाएंगे। मैं एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में 10 साल से काम कर रहा हूं गवर्नमेंट सेक्टर में, तो मैंने जब मेरे जो चीफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे तो उनको बोला कि मैं पेपर सिलेक्ट हुआ है, बहुत अच्छे रिमार्क आए उनके, तो मैं प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो बोले कि ठीक है, आप इंजीनियर डे के दिन आप प्रेजेंटेशन दीजिए इसका, और बोले कि हम आपको अच्छा लगा तो सहायता करेंगे। तो फिर उनको प्रेजेंटेशन दिखाया, सबको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बाबा का ज्ञान जो है, इट इज न्यू नॉलेज फॉर न्यू वर्ल्ड, ये नया ज्ञान है, सब नए कंसेप्ट है। और देखिए, साइंस इतना रिफाइन होगा क्योंकि कलयुग की कोई भी चीज सतयुग में नहीं आ सकती, जो कलयुगी है तो इसको ट्रांसफॉर्म होके प्यूरिफाइड फॉर्म में आना पड़ेगा साइंस को भी। तो इसीलिए साइंटिस्ट लोगों के आज के जो कंसेप्ट है, इसके बाबा के ज्ञान से ही इसको क्लियर कर सकते हैं हम। और बाबा तो सुप्रीम साइंटिस्ट है, बाबा के जितने भी कोर्स के चित्र है उसमें थोड़ा बारकाई से देखेंगे तो पूरा साइंस भरा हुआ है। तो फिर उसको ही खोजना शुरू कर दिया कि क्या साइंस छिपा है इन चित्रों में, तो वही आपको जिस प्रेजेंटेशन में थोड़ा दिखाएंगे कि कैसे बाबा के चित्रों में कितना बड़ा विज्ञान भरा हुआ है। सब बाबा ने, हमारे को ऐसी एक भी चीज नहीं कि जो बाबा ने बोली नहीं है, लेकिन बाबा जो बोलते हैं थोड़ा गुप्त, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, उसको बच्चों को स्कोप देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए। तो जिसको जो चाहिए बाबा के ज्ञान से वो जरूर मिलेगा, क्योंकि ये परमात्मा ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान है, और ये सर्वोच्च विज्ञान है, क्योंकि बाबा के ज्ञान में सारे विज्ञान, जितने भी शास्त्र, सब कुछ समाहित है। तो बाद में फिर और अनुभव बताता हूं आपको कि पेपर जब उन्होंने बोला कि ठीक है आप हेड ऑफिस चलेंगे, क्योंकि हेड ऑफिस से ही वो अप्रूवल वगैरह होता है, पैसा वहां से सैंक्शन होता है, तो फिर हेड ऑफिस में गया। लेकिन एक ही करता था हर समय कि प्रयोग करता था योग के, पहले बिल्कुल योग करना और फिर किसी भी ऑफिसर के पास जाना। तो योग के प्रयोग करते करते जितनी भी बाधाएं आई बाबा ने सारी सॉल्व कर दी, और फिर वहां से अप्रूवल मिला, सैंक्शन मिला। और एक ऐसी कड़ी थी वहां पे कि एक बहुत इंजीनियर, एकदम टफ माइंडेड, उसके पास भेजा मेरे को। तो मेरे को आधा घंटा उन्होंने वेट करवाया, तब तक मैं बहुत पावरफुल योग करता रहा बाबा से और सकाश देता रहा उस आत्मा को, क्योंकि वही फाइनल कड़ी थी जो ये सारा फाइनल उसके उनके हाथ में था। तो फिर उनको ऐसे हुआ कि उन्होंने मेरा प्रेजेंटेशन सुना, कम से कम 2 घंटे तक प्रेजेंटेशन सुनते रहे और सारे डाउट्स पूछते रहे, और अंत में पूरा हा में हा मिला दिया और पूरा एक्यूरेट बाबा का बच्चा ही बन गया वो तो। और बोले कि मैं आपको मदद करता हूं, और मदद किया उन्होंने, और फिर जाके पूरा सैंक्शन वगैरह सारा एक दिन में हो गया। और दूसरी दिक्कत मेरे पास ये थी कि मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि विदेश जाके सेवा भी करेंगे। थोड़ा अपने इधर ही लेवल में कॉलेजेस में वगैरह स्कूल में करते थे सेवा, ऐसे कभी सोचा नहीं था। तो फिर पासपोर्ट नहीं था, और 11 से 12 अक्टूबर एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और 10 अक्टूबर को वहां पहुंचना था, और छुट्टियां बहुत आई, बीच में पासपोर्ट बना नहीं। फिर आई 7 तारीख, 7 तारीख को तत्काल में पासपोर्ट निकाला। लोग बोलते थे कि 1 हफ्ते से तो बिल्कुल होता ही नहीं पासपोर्ट, 1 हफ्ता तो मिनिमम चाहिए पासपोर्ट बनने के लिए। तो बाबा ने मेरे को 7 तारीख को जैसे पासपोर्ट सबमिट किया डॉक्यूमेंट्स, 9 तारीख को 11 बजे पासपोर्ट मेरे हाथ में था। उसी दिन प्लेन की टिकट निकाली, उसी दिन बैंक में 1 लाख रुपए जमा हो गया, कंपनी ने 1 लाख रुपए जमा कर दिया, और उसी दिन टिकट निकाल के उसी दिन मैं चल पड़ा। 12:05 की फ्लाइट थी बम्बई से, और फिर वहां से पहुंचा इंडोनेशिया में, जहां पे बाली डेनपासर में अपना सेंटर है। हमारे सेंटर के थ्रू, कल्याण सेंटर के थ्रू दीदी जी ने मेल कर दिया था उनको कि हमारे एक भाई जी आ रहे हैं सेवा के लिए, तो उनका प्रबंध कीजिए। तो वहां पे एक भाई जी 2-3 घंटे से मेरा राह देख रहे थे, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज रहती है एयरपोर्ट पे, सारा करके फिर पहुंचा बाबा के घर में गया। तो बाबा का घर तो कहां भी जाइए तो सारा मधुबनी है, बहुत अच्छा सेंटर है, कम से कम 150 भाई बहन आते, बहुत बड़ा सेंटर है। और वहां पे भी बाबा ने सेवा करवाई उनकी, उनको भी बाबा का अच्छे से विज्ञान के द्वारा कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करे उनको भी संदेश दिया। तो 11 तारीख को प्रेजेंटेशन था, 3रे नंबर का ही प्रेजेंटेशन था, पेपर नंबर था 1, 2, 3, बहुत अच्छा, सब बाबा कमाल करता है बच्चों के लिए, सब बहुत बाबा की मदद, हर पल बाबा मदद करता है बच्चों को। तो पेपर प्रेजेंटेशन हुआ, ऐसा एक भी साइंटिस्ट नहीं कि जो कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर पाए, क्योंकि बाबा के ज्ञान जो है, आप देखिए स्लाइड्स में आपको देखेगा कि बाबा कैसे सारी चीजें लाता है। तो ये सारी चीजें मिले कहां से, तो देखिए कि जैसे बाबा के ज्ञान से, मुरलियों से, कुछ विचार सागर मंथन, कुछ अपने जो कोई इसमें जो काम कर रहे साइंटिस्ट भाई लोग उनसे वार्तालाप करके, और कुछ बाबा द्वारा जो अमृत वेला टचिंग करवाई बाबा ने, तो उनके आधार पर सारी स्लाइड्स बनवाई। तो अभी थोड़ा प्रेजेंटेशन दिखा देता हूं आपको। तो ये पेपर का टाइटल था जिसमें बाबा तो सारी बातें जो है ऐसी बताते हैं, जैसे देखिए उसमें प्रोसेस दिखाई है कि पृथ्वी जो है अभी द्वापर और कलयुग में 23.5 डिग्री से झुकी हुई है, तो आने वाले कुछ ही समय में वो जो है 0 डिग्री पे आएगी। तो सतयुग त्रेता में क्या होता है, 0 डिग्री पे रहती है पृथ्वी, सारा जो सोलर सिस्टम वो एक बार रिसेट हो जाता है। तो यही पेपर प्रेजेंट किया वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में, और उसी के कुछ अंश जो है जिसमें देखिए बाबा जो बताते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो अज्ञानियों के लिए तो डिस्ट्रक्शन है, महाविनाश है, और हमारे लिए महापरिवर्तन है। लेकिन महापरिवर्तन की इतनी कड़िया है, इतना बड़ा विज्ञान छिपा है इसमें, अगर देखा जाए तो ये पूरी बातें आपको समझ में आएगी। तो ये तो नया नॉलेज है नए वर्ल्ड के लिए, इसीलिए आपको थोड़ा अपना माइंड ओपन करना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट किसे कहा जाता है? एक साइंटिस्ट रहता है जो भौतिक जगत में खोजता है, और दूसरा साइंटिस्ट रहता है जो अंतर जगत में खोजता है। दोनों खोजने की प्रक्रिया कर रहे हैं, एक अंदर खोज रहा है एक बाहर खोज रहा है, इसीलिए दोनों साइंटिस्ट है। तो हम भी कौन है? हम रूहानी साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिनके पास सत्य ज्ञान है जो सारे संसार के पास नहीं है। कितना भी बड़ा पीएचडी होल्डर रहने दो, उसके पास भी यह ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए आइंस्टाइन जिन्होंने E=mc² और जिसके द्वारा फिर अणु बम का जो ये हुआ उसका प्रोडक्शन, तो अणु बम की जो निर्मित हुई, तो उन्होंने जब जापान में नागासाकी और हिरोशिमा में जो यूज हुआ तो उसमें जो कुछ संहार हुआ, तो उसके इससे फिर उनको पता चला कि ये बहुत भयानक चीज है। इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया वर्ल्ड को कि विज्ञान के बिना जो अध्यात्म है ये लंगड़ा है, और विज्ञान जो है अध्यात्म के बिना अंधा है। तो जब दोनों मिलते हैं सत्युक्त रेता में क्या होता है? यही तो होता है कि दोनों साइंस और अध्यात्म, बाबा का ज्ञान और जो साइंस के जो साइंटिस्ट लोग हैं, जो दोनों मिल जाते हैं तो ये धरती जो है स्वर्ग बन जाती है। तो ये तो यूनिवर्स बताते हैं, आज का भौतिक जो साइंटिस्ट है ये यूनिवर्स बताते हैं कि ये नंबर ऑफ गैलेक्सीज और ये सारा बहुत कुछ है, इसमें बहुत सारे सूरज है, बहुत सारे धरतियां है, ऐसे बताते हैं। लेकिन बाबा के ज्ञान के हिसाब से ये बहुत डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो ये इनको आधा ही पोर्शन मालूम है, आधा पोर्शन तो इनको पता ही नहीं है। इसीलिए बहुत ट्राई किया इन साइंटिस्ट लोगों ने कि इसके इक्वेशन बनाए जाए, सारा विश्व का एक इक्वेशन हो जिसमें वो इक्वेशन को सॉल्व कर पाए। लेकिन विश्व जो है इसके ऊपर भी आधा है जो उनको पता नहीं है, जो बाबा के बच्चों को पता है। तो ऊपर का जो सेक्शन देखा जाए तो अगर हम देखेंगे तो यहां से हमें दिखेगा कि ये जो सेक्शन है जहां पे बाबा बोलते हैं कि ये पृथ्वी, उसके बाद जल, उसके बाद अग्नि, वायु और आकाश, तो ये ऐसे वहां पे सेक्शन है, यानी एनर्जी लेवल्स है। जैसे हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो उसकी एक एनर्जी लेवल है, तो ऐसे पांच एनर्जी लेवल ऊपर भी है, जिसमें जो एक दिखता है तो सूक्ष्म वतन, उसके बाद जो है बाकी के धर्म और धर्म पिताएं, ये एक एनर्जी लेवल है। उसके बाद 108 रतन और बाकी के जो आत्माएं, ये एक एनर्जी लेवल है। और उसके बाद में जो है जिनको मम्मा बाबा हम कहते हैं, तो वो एक एनर्जी लेवल है जो 9 डायमेंशन में बैठे हैं। और उसके ऊपर जो है शिव बाबा है जो 10 डायमेंशन में बैठे हैं, और वो सबसे हाईएस्ट एनर्जी साइंटिस्ट लोग मानते हैं, जो है अल्ट्रा हाई एनर्जी, जिसकी पावर वो बताते हैं 10^29 गीगा इलेक्ट्रॉन होल्ड्स, इतनी पावर वो बताते हैं। तो देखिए पुरुषार्थ जैसे ज्ञान में देखते हैं हम कि जिसको बीज रूप अवस्था कहा जाता है, कोई भी आत्मा अगर 9 डायमेंशन में जाके, अगर ब्रह्मा बाबा जहां बैठे हैं वहां पे जाके योग करेगी, तो सिर्फ 2 दिनों में उसका तीसरे दिन ही शरीर छूट जाएगा, क्योंकि इतनी पावर, इतनी एनर्जी लेवल बाबा के पास है जो सारे विश्व में ये होती है, कॉस्मिक रेज जिसको बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, तो इतनी पावर वो शक्ति है। तो लेकिन क्या होता है, हम योग करते हैं तो 1 सेकंड के लिए जाते हैं, तुरंत खाली नीचे आ जाते हैं। तो यही होता है, तो कोई भी आत्मा को अगर पुरुषार्थ बढ़ाना है तो वो डायमेंशन में जाके, 9 डायमेंशन में जाके अगर शिव बाबा से योग लगाएंगे तो जल्दी से जल्दी जो आत्माएं सत्व प्रधान, पावरफुल, पवित्र बन सकती है। तो ये ऐसे एनर्जी लेवल्स है जो साइंटिस्ट को पता नहीं है, लेकिन बाबा के बच्चे जो है इसके इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उनको सब पता है। और अगर देखा जाए तो एक ये जो विश्व है एक पूरा साइकिल है, उनको तो आधा ही पता है, लेकिन ये साइकिल है। और साइकिल होने से क्या होता है कि इसमें जितनी भी प्रक्रियाएं होती है, जितनी प्रक्रियाएं होती है, ये सारे साइकिल्स है। इसीलिए संसार में जो भी है वो साइकिल में है, जैसे वाटर साइकिल है, प्लांट साइकिल, रॉक साइकिल, इवन कार्बन साइकिल, फूड साइकिल, नाइट्रोजन वाटर साइकिल, इतना ही नहीं अपनी घड़ी, ऋतुएं और ये एसी सप्लाई जो यूज करते हम, ये दिन और रात, ये सारे साइकिल्स है, क्योंकि ये सारे सिस्टम, ये सारे जो है एक ऐसे यूनिवर्स में है जो बेसिकली यूनिवर्स ही साइकिल है। तो इसीलिए इसमें जो भी प्रक्रिया होते हैं, इतना ही नहीं बाबा को भी परमधाम से आना पड़ता है और बाबा को भी जाना पड़ता है, साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है, इसमें कोई भी छूट नहीं सकता है। हम आत्माएं भी आती है और हम भी चले जाते हैं परमधाम, हमको भी साइकिल कंप्लीट करना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स ही जो है एक साइकिल से बना हुआ है। तो इसी तरीके से वर्ल्ड ड्रामा व्हील जो है, जिसको हम समय का चक्र जिसे कहते हैं, तो ये भी एक क्या है, ये भी एक चक्र ही है। और चक्र की खासियत, एक साइकिल की खासियत ये रहती है कि वो रिपीटेटिव रहती है और साइक्लिक इन नेचर, वो रिपीट होती है और इक्वली रहती है। जैसे ऋतुओं को भी देखिए, दिन और रात, इसको भी देखिए आप, तो ये इक्वली डिवाइड है। उसी तरीके से ये सारा ये भी है टाइम व्हील जिसको बोलते हैं हम, तो ये भी समान भागों में विभागा गया है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर कलयुग, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन एज, और ऐसा एक एज रहता है जिसको डायमंड एज बोलते हैं, जिसको संगम युग कहा जाता है। उसी में ही सारे संसार का एंट्रोपी जिसको बोलते हैं, उसमें रिवर्सल होता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी, वो आगे बात करेंगे कि कैसे होता है, कैसे वो अल्ट्रा हाई एनर्जी सृष्टि पे आती है और कैसे सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो देखिए सोलर सिस्टम भी क्या है, ये भी एक साइकिल ही है। हर एक चीज संसार की जो है साइकिल ही है। ये दिन और रात जो होते हैं, पृथ्वी घूमती है, तो वो भी क्या है, एक साइकिल है। दूसरा सूरज के अराउंड घूमती है, वो भी एक साइकिल है। और इतना ही नहीं, जो साइंटिस्ट लोगों को पता नहीं, वो भी सारी चीजें बहुत सारी बाबा बच्चों को टच कराता है। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये जो दक्षिण और उत्तर ध्रुव है, ये ऊपर ही घूमते हैं 360 डिग्री, लेकिन देखा जाए तो ये क्लॉक के हिसाब से 5000 साल में, ऐसे देखिए कि नेचुरली ऐसे घड़ी के कांटे हैं नॉर्थ और साउथ पोल, जो युगों के हिसाब से घूमते हैं और 5000 साल में एक 360 डिग्री कंप्लीट करते हैं। और इसीलिए उसका एंगल आता है 360 डिवाइडेड बाय 5000, वो एंगल आता है 0.072 डिग्री एक साल में। किसी भी साइंटिस्ट ने अगर मेजर करने का ट्राई किया तो 0.072 डिग्री इंटू 100 तो एंगल आता है 7.2 डिग्री। इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि बहुत 100 साल में इतना ही मूव होता है, इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि नॉर्थ ऊपर घूमता है, साउथ नीचे घूमता है। और अभी आपको मालूम है नासा, इसरो, ऐसे बहुत बड़े ये ऑर्गेनाइजेशन है। अभी नासा ने स्टेटमेंट दिया था कि ये जो पोल्स है ये फ्लिप होने वाले हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई भी चीज जो होती है संसार की, ऑल ऑफ ए सडन कभी नहीं होती है, ये इट्स अ प्रोसेस है, एक एंगुलर मोशन से होता है। ये इसका स्पीड है 0.072 डिग्री पर ईयर, एक साल में इतना ही होता है। तो ये 360 डिग्री युगों के हिसाब से होता है, आगे देखेंगे कैसा होता है। तो बेसिकली हमारा जो अर्थ है, इसमें अंदर जो दिखता है आपको लाल वाला, वो गोला कोर है, जिसमें करंट से चार्ज है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो एक सुपर कंडक्टर है, जो 810 साइंटिस्ट बोलते हैं कि 810 मेगावाट को चार्ज है, लेकिन आज उसकी जो उसकी क्षमता है, पावर है, उसकी कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे साइकिल कंप्लीट होने को आ रही है 5000 ईयर्स की, तो ऑटोमेटिकली इसकी एनर्जी डाउन हो रही है। और इसी के वजह से आज जो है नॉर्थ और साउथ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो, वो वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों को ये पता नहीं कि ये एग्जैक्ट क्या होगा, कैसे चार्ज होगा, ये सारी बातें उनको पता नहीं, लेकिन बाबा के बच्चों को इस सारी जानकारी है और ये संसार के सामने जरूर आएगा और सारी बातें क्लियर हो जाएगी सबकी। तो यही होता है कि ये जो करंट है, जो जिसको इसका एक रीजन है कि ये जो जब जिसमें बाबा बोलते हैं कि पाश्चिमात्य देशों में क्या होगा, न्यूक्लियर वार, और न्यूक्लियर वार से जो पावर निकलती है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से, वो मेगावाट्स, थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स रहती है, और उसी के द्वारा ये कोर दोबारा चार्ज होता है। तो यही रहता है कि क्योंकि ये अगर एक समय ऐसा आएगा कि ये करंट इतना कम हो जाएगा कि ये जो पोल स्टार जिसको ध्रुव तारा बोलते हैं, वो भी अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देगा, और कोई नासा, इसरो कोई जान नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है, लेकिन बाबा के बच्चे तभी सब पहले ही बता देंगे कि ऐसा ऐसा होगा, क्योंकि बाबा ने सर्वोच्च ज्ञान दिया है बच्चों को और सर्वोच्च विज्ञान सिखाया है। तो ये ऐसी सारे बातें होगी भविष्य में। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और दूसरा देखिए, पृथ्वी हमारी झुकी क्यों है, इसका रीजन क्या है। देखा जाए तो जिसको इक्वेटर बोलते हैं हम, तो इक्वेटर के इधर देखेंगे तो लैंड ज्यादा है, इधर पानी ज्यादा है, एक साइड में वजन ज्यादा हो गया, एक साइड में पानी वो हल्का है, इसीलिए पृथ्वी द्वापर युग से झुकी हुई है। क्योंकि द्वापर युग में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, जिससे क्या होता है, पृथ्वी जो एक गोला रहती है सतयुग त्रेता में, वो जो है, क्योंकि अंत में क्या होगा, जब डिस्ट्रक्शन होगा, विनाश होगा, तो बहुत सारे प्राणी, पशु जो है, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ये सारे अंदर गड़प होके 2500 साल तक उसका बेकिंग होता रहेगा। जो आज कलयुग के अंत में हम कोयला, गैस, ऑयल जो यूज कर रहे हैं, वही है जो 5000 साल पहले अंदर जो दफन हुआ था पूरे इसमें। लेकिन क्या होता है, एक समय ऐसा भी आता है कि द्वापर युग में जैसे क्या होता है कि इसका एक्सेसिव प्रेशर बढ़ने लगता है अंदर पृथ्वी के अंदर, तो उसी के द्वारा स्पोर्ट होके ये सारे खंडों की निर्मिति होती है, 7 खंडों की। और ये जो 7 खंड है, तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि कभी ये नजदीक थे और बाद में धीरे धीरे ऐसे ये हुए, लेकिन देखा जाए तो ये स्पोर्ट हुआ तभी ऐसे खुल गए। तो ये अलग थोड़ा विज्ञान है उसके पीछे। तो देखिए हमारा ये मॉडल बना है, मुखर्जी भाई जी ने बनाया ये मॉडल ज्ञान सरोवर में। तो ये मॉडल बहुत अच्छी तरीके से सारे पृथ्वी का रोटेशन बहुत अच्छे से बता सकता है। तो इसमें ऊपरी का जो क्षेत्र जो है जिसको वर्ल्ड जिसमें युगों की हमें ये मिलती है आइडिया, और नीचे जो स्वस्तिका दिखाते हम सारे संसार में स्वस्तिका का यूज होता है। लेकिन देखिए साइंटिफिक है स्वस्तिका जो है, पूरा साइंस भरा है स्वस्तिका में। आज तक लेकिन किसी के ख्याल में नहीं आया, लेकिन बाबा के बच्चों को मिलता है ये सारी चीजें। स्वस्तिका अगर देखा जाए तो इसके हम अगर सीधा करेंगे उसको तो आपको सामने दिखेगा, मैं दिखाता हूं बाद में। तो ये इसमें दिखा है कि सतयुग त्रेता में कैसे रहेगा, जिसको बाबा बोलते हैं भारत एक अविनाशी खंड है जिसका विनाश नहीं होता है। और भारत कैसे दिखेगा, इतना छोटा सा रहेगा सिर्फ विश्व में, और बाकी के खंड जो है देखिए आप कुछ भी नहीं है, सतयुग त्रेता में कुछ भी नहीं है, सिर्फ भारत रहता है। और उसके एक्जैक्ट अपोजिट क्षेत्र जो हिमालय ढलता है चाइना की तरफ, उससे जो भूमि बनती है, और कुछ रशिया का थोड़ा सा पार्ट, इसी के द्वारा ये जो है एक इंडिया ये साइड में, और उसके अपोजिट साइड में वही हिमालय ढलने के बाद जो बनता है क्षेत्र, जो बाबा बोलते हैं आपके पिकनिक के स्पॉट रहेंगे, तो वही क्षेत्र जो है यही बचता है। और बाकी जो नॉर्थ और साउथ पोल का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पूरा बर्फ पिघल के पूरा पानी पानी हो जाता है ये सारा। तो देखा जाए तो ये साइड बहुत अच्छी है 2500 साल, जिसको पॉजिटिव हेड बोलते हैं हम, और इसको टेल बोलते हैं, जिसको हेल और हेवन बोला जाता है, जिसमें एक भाषा एक राज्य एक सब कुछ एक रहता है, और एक रिलीजन रहता है जिसको डीटी डिनास्टी जिसको बोलते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म, और बाद में बाकी के धर्म और सब आते हैं, बाकी खंड में विभाग जाता है। तो ये सारे ऐसे होती है चीजें। तो यही बोलते हैं साइंटिस्ट कि पहले खंड एक जगह पे थे बाद में मूव हुए, और गोंडवाना उसको जो पांच खंडों को बोलते कि एग्जैक्ट अपोजिट क्षेत्र गोंडवाना लैंड। लेकिन गोंडवाना लैंड तो ये तो फॉरेन का वर्ड नहीं है, आज भी गोंडवाना लैंड जिसको महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज भी जहां पे गोंड लोग रहते हैं उनको उसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड। तो ये तो इंडियन वर्ड है, इसीलिए भारत जो था यही था और इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्षेत्र था, तो उनकी जो अलग संकल्पना है इसके बारे में। और ग्रीक्स के जो महान फिलोसोफर थे तत्वज्ञ, जिन्होंने बताया प्लेटो ने कि एक अटलांटिस नाम का ऐसा खंड था जो जिसमें रियली ऐसा था कि वो रियल पैराडाइज था अर्थ पे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ये पैराडाइज के और वहां पे हाईएस्ट सिविलाइजेशन और टेक्नोलॉजी भी बहुत जबरदस्त थी, वही वर्णन सतयुग त्रेता का है देखा जाए तो। और लेकिन जब ग्रीडी और डिवाइन क्वालिटीज लॉस करते हैं वहां के लोग, तो क्या होता है खंड लॉस हो जाता है, जिसको अटलांटिस कहा गया है। तो आप अगर आप बोलेंगे कि यह सृष्टि चक्र 5000 साल का क्यों है, क्यों 10000-20000 साल का क्यों नहीं है, तो इसका भी रीजन है साइंटिफिकली है, देखा गया है। एक अमेरिका में एक स्टडी हुआ था, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड जो वीक हो रहा है इसको लोगों साइंटिस्ट लोगों ने मेजर किया, तो उसमें गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसके पहले सिडने चैपमैन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने भी ऑब्जर्वेशन लिए थे, और बाद में ईसा नाम की जो संस्था है एनवायरमेंटल साइंस सर्विसेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की एक संस्था है, तो दोनों का डेटा फिर दोनों ने सब एनालिसिस किया, तो उसमें उनको ये पता चला कि जो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ये 2500 साल इसका हाफ लाइफ है आधा आयुष्य, और उसके बाद उसका 5000 साल ये फुल लाइफ है। और न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफ होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जिससे दोबारा ये कोर चार्ज होके दोबारा अपना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, और वो आने वाले 5000 साल के लिए और चक्र चलता रहता है। तो ऐसा ये इसके साइंटिफिक प्रूफ है। इतना ही नहीं, इसके आगे भी बहुत सारे प्रूफ्स है, क्योंकि क्या होता है कि 5000 साल के बाद एक बार साइकिल रिसेट होता है, हर एक चीज ट्रांसफॉर्म होती है, परिवर्तन होता है, क्योंकि देखा जाए तो ये एनर्जी है और एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको ऊर्जा अक्षयता का नियम जिसको कहा जाता है, जिसमें एनर्जी क्या होती है सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है। तो हर एक चीज ट्रांसफॉर्म होती है, हर एक चीज ट्रांसफॉर्म होती है, इसीलिए हर एक चीज संसार की बोलेंगी कि आई एम नॉट बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड, क्योंकि बेसिकली सब तो हर एक चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है हर 5000 साल के बाद। इसीलिए बहुत सारे प्रूफ्स ऐसे हैं कि हर एक चीज बताएंगे कि आई एम नॉट दैट मच ओल्ड, यानी इतना भी लाखों करोड़ों साल जो बोलते हैं साइंटिस्ट लोग, क्योंकि साइंटिस्ट लोग एक ही कंसेप्ट है उनका, वो टाइम को स्ट्रेट लाइन में मेजर करते हैं, लेकिन टाइम हम एक मिनट भी मेजर करना है तो घड़ी को ऐसा जब 60 सेकंड घूमती है साइक्लिक में, तब जाके एक सेकंड एक मिनट गिना जा सकता है। एक साल अगर गिनना है तो 365 दिन ऐसे जब पृथ्वी घूमती है सूरज के अराउंड, तब जाके एक साल एक साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन आज के साइंटिस्ट जो है ये स्ट्रेट लाइन में मेजर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा कि हर एक को ये जो टाइम है ये साइकिल में ही मेजर करना पड़ेगा, साइक्लिक नेचर में। तो इसके बहुत सारे प्रूफ्स है, जैसे देखिए एक तो मैग्नेटिक फील्ड का हो गया, दूसरा है कि नोआस फ्लड, जिसने एक पीएचडी की है, डॉक्टरेट है उनको, उन्होंने बोल उसमें थेसिस में आया है कि जो यूनिवर्सल फ्लड रहता है जब सारा सृष्टि जलमय हो जाता है, लेकिन थोड़ा क्षेत्र जिसको भारत और जो एग्जैक्ट अपोजिट क्षेत्र बचता है, तो वो क्षेत्र जो है वो जो उसको यूनिवर्सल फ्लड कहा जाता है और बाइबल में उसको नोआस फ्लड कहते हैं। तो 5000 साल में हुआ था ऐसा उस पीएचडी थेसिस में आया है। और दूसरा है कि देखा जाए तो 3000 साल पहले, क्राइस्ट के 3000 साल पहले पैराडाइज था, और उसका और देखा जाए तो अर्थ भी उतना पुराना नहीं है, 6000 से 10000 साल तक आता है। और दूसरा है कि लीड जो है, जो क्या होता है कि यूरेनियम जो रहता है, जो न्यूक्लियर वेपन्स में सबसे पावरफुल यूज करते हैं, 1 ग्राम यूरेनियम एक तरफ रखिए और दूसरे तरफ 2500 किलोग्राम कोयला, तो दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो न्यूक्लियर वेपन इतने खतरनाक क्यों है? क्योंकि इतना सा 1 ग्राम यूरेनियम जो है इतना पावरफुल है कि वो सारा उससे टेम्परेचर जो है बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री, हजारों लाखों डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस होता है। तो यही रीजन रहता है। और इसमें एक होता है कि जब भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं तो ये जो लीड रहता है, ये यूरेनियम जब न्यूक्लियर वार होता है तो यूरेनियम लीड में कन्वर्ट होता है, और लीड जो है अगेन 5000 साल के बाद यूरेनियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक प्रूफ है। अगर लाखों करोड़ों साल रहते थे तो हमारे पास हिस्ट्री भी क्या रहती थी, लाखों करोड़ों साल की रहती थी, लेकिन हमारे पास हिस्ट्री सिर्फ 5000 साल की अवेलेबल है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इतना ही नहीं कि अगर ये समंदर और ये सारा जो है लाखों करोड़ों साल का रहता था तो इतना मड, इतना सॉल्ट इसमें होता था कि पानी मिलता ही नहीं था हमारे, लेकिन ये रिसेट होता है 5000 साल के बाद। और ऐसे बहुत सारे बायोलॉजिकल डिकेज है, सोलर सिस्टम, ब्लू हाइड्रोजन का, गैल्वेनिक आर्म्स, ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स हैं कि जो सिद्ध करते हैं कि यह बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर नहीं है, करोड़ों लाखों साल नहीं है, यह हर 5000 साल के बाद पूरा परिवर्तन होता है। और इसकी एक वेबसाइट है जिसमें तो बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं, कोई चाहता है तो रेफर कर सकता है। तो अभी प्रेजेंटली आएंगे हम कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम्स है संसार में। अभी देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसको बोलते हैं, आर्म फोर्सेस जो है, तो पॉपुलेशन, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स संसार में चल रहे हैं, नेचुरल कैलामिटीज आ रही है, तो ये कुछ तो भी इंडिकेट कर रहा है हमें। जैसे किसी व्यक्ति को बड़ा ये होता है, डिजीज होता है, तो पहले उसको सिम्टम्स दिखते हैं, उसी तरीके से सृष्टि भी हमें सिम्टम्स दिखा रही है, कहां भूकंप हो रहे, कहां सुनामी आ रहे, कहां कुछ हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग ये सब हो रहा है, लेकिन क्या है कि हमें जागरूकता नहीं उसके प्रति। लेकिन ऐसा एक समय आएगा कि ये बहुत जबरदस्त होगा और उसको ही महाविनाश या महापरिवर्तन कहा जाता है। तो ये सारे बहुत सारे आज तक कितने डेथ्स हुए लोगों के, ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स में, ये सारा बताया इसमें, बहुत सारे आज तक हुए हैं इसमें डेथ्स लोगों के अलग अलग इसमें। और ऐसा समय आता है जब सृष्टि जो है हाईएस्ट एंट्रोपी पे चली जाती है। तो भगवद गीता में कहा गया है, जब वेन एवर देयर इज अ डीके ऑफ राइटियसनेस ओ भारता एंड अ राइज ऑफ अनराइटियसनेस देन आई मैनिफेस्ट माई सेल्फ, श्रीमद भगवद गीता। तो यही कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानी होती है भगवदगीता के भाषा में, तो उसको हाईएस्ट एंट्रोपी, साइंस के लैंग्वेज में हाईएस्ट एंट्रोपी बोलते हैं। तो यही क्या होता है कि जब ऐसा समय आता है तो उसको आना पड़ता है वो परमात्मा शक्ति को, सारे संसार को परिवर्तन करने के लिए। और जब हाईएस्ट एंट्रोपी हो जाता है तो सृष्टि पे आके ऐसा एक समय है जिसको ट्रांजिशन पीरियड बोलते हैं। जैसे एंट्रोपी तो रिवर्सल होता नहीं है, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कोयला जला दो आप, वो पानी को उसकी हीट मिल गई, कुछ गैसेस बन गए, उसको दोबारा कोयला नहीं बना सकते, ये तो बराबर है उनका। लेकिन एक कंसेप्ट ऐसा भी है, रिवर्सल ऑफ एंट्रोपी पॉसिबल है, जब कोई भी भौतिक जगत की कोई भी शक्ति जो इससे परे है, जिसकी अल्ट्रा हाई एनर्जी है और जिसका जीरो एंट्रोपी है, ऐसी ही शक्ति जब इस आती है लूप में, फिजिकल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में, तब जाके रिवर्सल ऑफ एंट्रोपी पॉसिबल है। तो यह सारा परिवर्तन तभी पॉसिबल होता है, इसीलिए वो सर्वोच्च शक्ति जिसमें परमात्मा शिव कहा गया, अल्ट्रा हाई एनर्जी, वो ब्रह्मा तन का आधार लेके, मनुष्य तन का आधार लेके इस धरा पे आती है और पहले तो मनुष्य को सुधारती है, सबसे पहले ज्ञान देती है और बाद में योग सिखाती है, सारा अज्ञान नष्ट होता है, योग से आत्मा सत्वप्रधान पावरफुल बनती है, पवित्र बनती है, और इसी के द्वारा सारी सृष्टि जो है, पांचों तत्व, फाइव एलिमेंट जो है वो भी प्यूरिफाइड होते हैं। तो ये पूरा साइंस है, इसमें कोई ऐसा थ्योरेटिकल बातें कुछ नहीं इसमें। तो अभी देखेंगे कि सृष्टि परिवर्तन में मेन भूमिका किसकी रहेगी। तो जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं कि पाश्चिमात्य जो देश है दो कंसेप्ट बाबा यूज करते हैं, एक है विनाश कैसे होता है बाबा ने बोला है, एक होता है संशय बुद्धि विनश्यन्ति जो यूरोपवासियों के लिए लागू पड़ता है, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, और भारतवासियों के लिए विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। विपरीत बुद्धि जो बाबा को नहीं जानते परमात्मा को नहीं जानते वो विपरीत बुद्धि है, तो आपस में लड़ेंगे तो खुद का विनाश कर लेंगे और सिर्फ शंकाएं उत्पन्न होगी। ऐसा समय आएगा जब ये प्रेजेंटेशन ये पेपर जाएंगे उन लोगों के पास इंटरनेशनल लेवल पे, ऐसा एक समय आएगा जब देखेंगे कि इतना खतरनाक है, इसमें तो हमारे खंडे ही गायब हो गए पूरा, हम नहीं रहने ही वाले नहीं है, तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा करार हो जाएगा, ट्रीटी हो जाएगी जिसमें ऐसा तय होगा कि ये बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन किसी ने यूज करना नहीं है। लेकिन ऐसा भी समय आएगा जिसको शंका बोलते हैं, सिर्फ शंका, संशय बुद्धि विनश्यन्ति, तो यही होगा, सिर्फ शंका होगी कि किसी के रडार पे किसी ने कोई हमला कर दिया है, सारे थोड़े सिग्नल मिल जाएंगे उनको तो लगेगा कि किसी देश ने हमला कर दिया है, और इसीलिए क्या हो जाएगा कि दूसरे वो देश मिसाइल का प्रयोग करेगा, उसको लगेगा इसने मिसाइल का प्रयोग किया अभी मैं भी करता हूं, ऐसा करके सारे संसार में आज वो बोलते हैं 2014 की फिगर देते हैं 17,000 है, लेकिन ब्लैक मार्केट में अगर देखा जाए तो ये 50,000 के ऊपर है, जिसमें देखा जाए तो जिसमें $5 trillion इन्वेस्टमेंट, 50,000 न्यूक्लियर वेपन्स और 700 करोड़ लोगों को इसका इसे ये सारा धोखा है। तो यही है सारा जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, यही सारे सृष्टि में जिस दिन भी कोई भी देश एक भी न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा उसी दिन सारी प्रक्रियाएं सृष्टि परिवर्तन की शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये श्रृंखलाएं हैं, ये चेन रिएक्शन है। एक फूटने से क्या होगा कि 50,000 है उसके भी ज्यादा है, तो ये क्या होगा कि एक तरह से जैसे न्यूक्लियर वेपन्स के एक तरह से ये कंटिन्यूसली बॉम्ब ब्लास्ट जिसको बोलते हैं हम सीरीज बॉम्ब ब्लास्ट, उस तरीके से हो जाएगा। तो ये यूरेनियम है जिसमें ब्लैक ऐसे दिखा है आपको, यही सबसे खतरनाक चीज है जो सारे सृष्टि को नेस्त नाबूद करेंगी, जिसमें पावर इतनी है कि 1 ग्राम में जो 2500 kg कोयला को उसके इतनी मिलती है, और 1 ग्राम में 2 पे अगर 7 0 देंगे तो इतने किलो कैलोरीज एनर्जी 1 ग्राम में प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए उसका जो टेम्परेचर रहता है वो मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, जहां पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है वो सेंटर पॉइंट पे बिलियंस ऑफ मिलियंस करोड़ों लाखों डिग्री सेल्सियस, और उसके अगर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर का रेंज है तो उसके लास्ट रेंज में मिलता है 5,000 से 6,000 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत बड़ा टेम्परेचर है, अगर इसको थोड़ा देखा जाए तो ये इतना हार्मफुल है। और एक साइंटिस्ट ने इस पे स्टडी भी किया कि सृष्टि को या पृथ्वी को नष्ट करने के लिए कितने वेपन्स चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसको ऐसे मिला कि सिर्फ 16,000 सफिशियंट है, और अभी तो वर्ल्ड में 50,000 के ऊपर है, ऐसे तो पृथ्वी का कितने बार हम विनाश कर सकते हैं, इतनी पावर आज भी है। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब दिखा है इसमें अलग अलग कैपेसिटी के, आज अमेरिका के पास इतना बड़ा बॉम्ब है जो जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का यूज किया था उन्होंने, फैट मैन और लिटिल मैन, तो वो तो बहुत मामूली चीज थी, आज 32,000 टाइम पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब अमेरिका के पास है। और दो बिल्ले जैसे बाबा बोलते हैं रशिया और अमेरिका, इतनी कॉम्पिटिशन चालू है, एक बनाता है फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, एक बनाता है मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, इतनी कॉम्पिटिशन है लोगों की है। तो यही है, यही विनाश, संशय है ना एक दूसरे पे, रशिया कहीं हमला ना कर दे तो हम ये हो जाएगा, तो ये संशय है इनके मन में, इसलिए सारा ये हो रहा है। और यही वो दिन रहेगा जिस दिन एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा, तो उसी दिन जिसको गायन है सब शास्त्रों में, जिसको कोई कयामत का दिन बोलता है, जिसको भारत महाभारत की महाभारी लड़ाई बोलते हैं, यूनिवर्सल फ्लड कहा गया है, ये सारी प्रक्रिया उस दिन से शुरू होगी जिस दिन एक भी बॉम्ब संसार में फूटेगा। और इसका टेम्परेचर इतना रहता है ऐसे लगेगा कि सूरज मानो धरती पे आ चुका है, क्योंकि इसका सूरज के 10 पट सरफेस टेम्परेचर जितना है उसके 10 पट इसका टेम्परेचर रहेगा न्यूक्लियर बॉम्ब से, तो सूरज मानो धरती पे उग आया है, ऐसी सिचुएशन रहेगी। लेकिन उस समय जो अपना जो है मधुबन ये लाइट हाउस बनेगा, उधर अलग लाइट रहेगा, इधर अलग लाइट रहेगा, ये रूहानी रहेगा और वो भौतिक जगत का वो विनाशकारी लाइट रहेगा। तो ये टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है इसमें बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस, ये चेन रिएक्शन है और कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। तो सबसे अगर देखिए इतना अगर टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है तो आयन जिसको लोहा बोलते हैं हम,
1600 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। जो पुराने हम बल्ब यूज करते थे घर में, उसका टंगस्टन का वायर रहता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस को मेल्ट हो जाता है। इसका मतलब है जिसमें लाखों करोड़ों डिग्री सेल्सियस और आउटर में 5000-6000 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ऐसा है कि दुनिया का कोई भी धातु उसमें नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है, कोई भी मनुष्य, कोई भी प्राणी, ना इतने, ना तो जंगल, ना तो जमीन, ना तो पहाड़ पर्वत, कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि टेम्परेचर ही उतना है। सारा पिघल जाएगा, एक तरीके से लावा बन जाएगा जो खंड जो है ना, और ये सातों खंडों में विभागा हुआ जो सारा ये है, ये पृथ्वी जो है वो सातों खंडों एक सारा लावा बन के, नीचे से लावा, ऊपर से लावा, सारा एक वेल्डिंग हो जाएगा पृथ्वी, और वेल्डिंग होके सिर्फ भारत और उसका अपोजिट क्षेत्र बचेगा। आप बोलेंगे कि भारत को आप जानबूझ के बचा रहे हैं, ऐसा सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साइंटिफिकली रीजन है इसके। बाबा मुरलियों में कहता है भारत तो एक कोने में है, नंबर एक। दूसरा बोलता है कि बहुत ऊंचाई पे है, 8000 मीटर, ये बहुत बड़ी ऊंचाई है। लेकिन बाबा ने ये भी बोला है बम्बई कराची ये पानी में जाएगा, 7200 किलोमीटर इतना रेंज है अपना कोस्टल एरिया, जो 7200 किलोमीटर है, तो उसमें जितने भी बहुत सारे सिटीज जो रहेगी वो चली जाएंगी। और स्पेशली बाबा बम्बई का तो बहुत ज्यादा ये करता है, हम तो बम्बई से ही हैं। तो उसमें देखा जाए तो बम्बई देखा जाए तो क्या है, 7 बेट थे, 7 आइलैंड्स थे, सातों आइलैंड्स को ये मट्टी डाल के और सारा ये करके इसको एक बनाया गया है, जो माया नगरी की राजधानी के नाम से जाना जाता है। माया नगरी की अगर राजधानी है तो आके देखिए, उसको बम्बई कहा जाता है। तो ऐसे ही है, तो ये सारा बम्बई वगैरह कुछ नहीं रहता है सतयुग के, इसमें बम्बई नाम का प्रदेश नहीं रहता है। तो ये बहुत बड़ी, बहुत बड़ा विश्व परिवर्तन है, बहुत बड़ी इसमें सारी प्रक्रियाएं होने वाली है। तो इसको आप बिलीव करो न करो, आपके बिलीव करने से और ना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप मानो न मानो, लेकिन जो होना है वो होना ही है। वो तो समय है, समय के हिसाब से सब होता है, सृष्टि परिवर्तन किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इतनी सारी प्रोसेसेस होंगे उसमें होगी, जैसे कोर, जो कोर रहता है अंदर जो दिख रहा है आपको एकदम ऐसा लाइट प्रकाश, तो वो कोर रहता है पृथ्वी का, जो एक तरीके से एक सुपर कंडक्टर है, जो 810 मेगावाट को चार्ज होता है, लेकिन उसकी वीक हो रहा है वो, और उसी से मैग्नेटिक फील्ड वीक होके कुछ समय ऐसा आएगा और वीक होगा, और जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो है सूरज के वो डायरेक्ट आएंगे, क्योंकि ये वीक होने से एक तरीके से जो कवच है पृथ्वी का, ये कवच नष्ट हो रहा है, और इसीलिए बहुत सारे डिजीज वगैरह बाबा बोलते हैं ऐसी आएंगे कि कुछ बहुत सारा उससे भी ये विनाश हो सकता है। तो ये कोर भी चार्ज होगा इसमें, लेकिन कोर चार्ज होने की प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। साइंटिस्ट लोग बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बोलते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल नाम की एक जगह है जो अमेरिका के नजदीक आती है, तो वो ऐसा क्षेत्र है जहां पे कोई विमान जाता है तो अंदर चला जाता है, और जहाज भी जाता है तो गड़प हो जाता है, और आज तक कुछ भी मिला नहीं है। क्योंकि देखा जाए तो कोर जो है, कोर को एक डायरेक्ट ओपनिंग है, जहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाईएस्ट पॉइंट है, इसको डायरेक्ट ओपन है जो पानी से ढका हुआ है सिर्फ, और इसका महत्व ऐसे रहेगा। देखिए सृष्टि में जो भी बनाया, जो भी है उसका कुछ महत्व है। तो ऐसे दो ट्रायंगल है, एक ही ट्रायंगल नहीं है, दो ट्रायंगल है, एक जापान के पास है जिसको फॉर्मोसा ट्रायंगल, और एक बर्मुडा ट्रायंगल जो अमेरिका के पास है। तो यही ऐसे दो क्षेत्र है, जब न्यूक्लियर पावर, जब न्यूक्लियर वेपन्स विस्फोट होगा तब जो ऊर्जा प्रोड्यूस होगी वो 3-4 जगह पे काम में आएगी। एक तो कोर को चार्ज करेगी, देखिए बाबा बोलता है ड्रामा कल्याणकारी है, सही है, क्योंकि कोर अगर चार्ज नहीं होता है तो पृथ्वी सोलर सिस्टम में रहेगा ही नहीं, फेंका जाएगा, और जीवनमान यहां कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए जो न्यूक्लियर वार भी होता है तो कल्याणकारी है, तो कोर चार्ज होता है, नंबर एक। दूसरा ये होता है कि ये जो कोर ऐसे चार्ज होता है, और दूसरा है कि ये सारा खंड जो है वो लावा बन जाता है जमीन उनकी, और कुछ खंड स्लाइड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, समुन्द्र में चले जाते हैं। तो ऐसा होता है, और इसी के लिए आपको फिर ऐसा दिखेगा सतयुग त्रेता में, आपको सृष्टि सिर्फ ऐसा दिखेगा और 0 डिग्री पे आ जाएगी। यही है पेपर का पॉइंट कि पहले 23.5 डिग्री से झुकी थी, लेकिन ये आएगी ऐसे, इतनी सारी प्रोसेसेस हो गए, और बाद में सिर्फ इक्वेटर पे देखा जाएगा तो ऊपर एग्जैक्टली काउंटर बैलेंसिंग लैंड, नीचे काउंटर बैलेंसिंग लैंड, और पूरा पानी, और इसके द्वारा 0 डिग्री पे पृथ्वी दोबारा आ जाएगी। और दूसरा इतना ही नहीं, ग्रह तारों ने जितनी भी पोजीशन बदल ली है वो सारे अपनी जगह पे आएंगे, वो भी हम देखेंगे। तो ये बहुत सारी प्रक्रिया इसमें होने वाली है, और समुद्र की जो लेवल है इतनी बढ़ेगी पानी की, थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स, इतनी बढ़ेगी कि जिसमें कंट्रीज देशों के देश गड़प हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल का जितना भी आइस है, बर्फ है, वो सारा न्यूक्लियर पावर के हीट से सारा पिघल जाएगा और सारा पानी पानी हो जाएगा। और ये अभी आप बोलेंगे कि इंडिया कैसे बचेगा, ये चित्र में दिखाया गया है कि इसमें जो ये दिखता है आपको गोल्डन जैसा, ये यूरेनियम है जो सबसे खतरनाक है। जो अभी देख लीजिए जहां जहां यूरेनियम के माइंस है, तो समझ लेने का कि यहां पे 5000 साल पहले यहां पे न्यूक्लियर वार हुआ था, और यो जो लीड, जो यूरेनियम लीड में कन्वर्ट हुआ था वो जमीन के अंदर रह के 5000 साल के बाद दोबारा यूरेनियम कन्वर्ट हुआ, और वही यूरेनियम आज हम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो लेकिन भारत में देखिए आप, भारत में आपको कहीं भी आपको कहीं दिख नहीं रहा यूरेनियम। इसका मतलब है भारत का जो जमीन है, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियर वार होगा ही नहीं। और मैं तो भविष्य में ऐसा थोड़ा लगता है मेरे को कि भारत ऐसा देश रहेगा संसार में जो ऐसा एक मिसाल बनेगा संसार के लिए, जो कहेगा कि न्यूक्लियर वेपन्स हम डिस्ट्रॉय करेंगे। इतना अगर खतरनाक है तो एक भारत एग्जाम्पल बनेगा संसार के लिए। और आज की देखिए वातावरण भी वैसा ही है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर देखेंगे तो वैसे हस्तियां है आज भी जिसको ऐसे भी साइंटिस्ट है जिसको पता है कि डिसमेंटल कैसे करना है इसको डिसमेंटल भी, इसके पॉजिटिव यूज भी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, गलत इस्तेमाल किया। हम इतने दूर दूर तो जा सकते हैं अगर रॉकेट में भर देंगे ये यूरेनियम, बहुत दूर दूर का रास्ता तय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इतना पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं इससे कि आने वाले कितने भी साल, कितना भी पॉपुलेशन बढ़ने दो, किसी को बिजली का कम नहीं पड़ेगी। इतना इसमें इसके यूजेस है पॉजिटिव। तो लेकिन गलत इस्तेमाल हो रहा है इसका, और ये गलत इस्तेमाल से ही सारा नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए भारत जो है, भारत बचेगा इसमें, और भारत की भूमि जो है टनक मजबूत रहेगी एकदम। तो इसीलिए वो रहे, और हिमालय जो चाइना की तरफ ढलेगा, तो आप बोलेंगे कि क्यों, ऐसा क्यों होगा, एक अपोजिट क्षेत्र बनना है और उसका भी प्रूफ है, ऐसे क्यों होता है। आज भी देखिए सबसे ज्यादा कोयला जो है चाइना में मिलता है, 3660 मैट्रिक टन इतना कोयला चाइना में सबसे ज्यादा मिलता है विश्व का। इसीलिए यह बिल्कुल गारंटेड है जब हिमालय, क्योंकि हिमालय की प्लेट ऐसे, हिमालय ऐसे बना था, चाइना की तरफ से जब प्लेट आके टकराई थी तो ऐसे ऐसे चढ़ा था, लेकिन साइकिल कंप्लीट होके ऐसा ऐसा गिरेगा उसके ही साइड में, तो पूरा चाइना जो है पूरा दफन हो जाएगा। इसलिए आज भी 3660 मीट्रिक टन इतना कोयला मिलता है। तो ये है, ये सारी बातें सत्य है और ये होगी। तो ये देखिए अभी बोल रहे कि ऑयल गैस, हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए आज सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब तो रशिया और अमेरिका के पास है। और क्या होता है, कजाकिस्तान जिसको बोलते हैं, कजाकिस्तान करीबन थोड़ा मिडल में आता है दोनों के बीच में, सबसे ज्यादा यूरेनियम कजाकिस्तान में मिलता है। यहां से न्यूक्लियर वेपन आएंगे, यहां से आएंगे, गिरेंगे कहां, उधर ही वैसा ही क्षेत्र रहेगा कि जहां पे आज भी कजाकिस्तान, हमको भी न्यूक्लियर पावर बनाना तो हम भी उसी से लेते, सारा संसार उसी से लेता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में उसको ही सब यूरेनियम आके मिल गया बहुत सारा। तो ये ऐसा होगा। और जो बोल रहे कि अब सब कोयला गैस ऑयल सब खत्म हो रहा है, तो ऐसा भी समय आएगा कि ये तो पूरा बनना ही है ना दोबारा भी, ये भी जरूरी है, पूरा तो खत्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये जो विनाश महापरिवर्तन होता है, इसी में ऑयल गैस ये बनने के लिए बहुत सारे मनुष्य प्राणी जंगल ये सारे अंदर गड़प होना जरूरी है, तब जाके हम कलयुग के अंत में ये चीजें यूज कर पाएंगे। नहीं हुआ तो ये भी कल्याणकारी है, देखिए कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है परिवर्तन में। हाँ, रशिया का थोड़ा पार्ट बचता है, क्योंकि क्या होता है जैसे स्लाइड होता है हिमालय, तो थोड़ा पार्ट रशिया का भी बचता है, जो बाबा ने बोला है मुरलियों में कि वो ऐसा क्षेत्र बनता है जब आप पिकनिक के लिए वो जाते हो उधर, ऐसा है। तो ये ऑयल और गैस, नेचुरल गैस, जितना भी आपको कोयले की खान जहां भी है, समझना कि 5000 साल पहले जो हुआ था इसका आज यूज कर रहे हैं। और ज्योग्राफिकली देखिए तो इंडिया 8000 मीटर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, दूसरे साइड में हिमालय है और इधर से हिंदी महासागर, तो इसी के द्वारा, और दूसरा है कि न्यूक्लियर वार नहीं होगा, और एक है कि जिसका जो प्लेट्स है अंदर से देखा जाए तो बहुत मजबूत प्लेट्स है, स्टडी हुआ था इस पे। तो ये सारा इसीलिए भौगोलिक दृष्टि से, और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि बाबा जिस क्षेत्र में आता है वो भूमि भी बच जाती है, अल्ट्रा हाई एनर्जी है ना बाबा, तो क्षेत्र को भी क्षेत्र बच जाता है। इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान जो अलग है वो एक हो जाएगा, पूरा इंडिया का, क्योंकि वही इंडिया का पुराना ही पार्ट था, तो सारा एक हो जाएगा। तो ऐसे है। तो लेकिन इतना ही नहीं, इंडिया वाले, इंडिया में भी बहुत चेंजेस होंगे, क्योंकि संसार में इतने खंड गड़प हो रहे, तो अंदर से देखा जाए तो श्रृंखलाओं में खंड जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं अंदर, जिसको टेक्नोटिक प्लेट्स बोलते हैं साइंटिस्ट लोग। तो जब इतना हो जाएगा तो सब हिलेंगे ऐसे, तो तब भारत में भी नेचुरल कैलामिटीज, जिसको कभी भूकंप, सुनामी, ये सारे अर्थक्वेक्स वगैरह सब आएंगे। इतना ही नहीं, ये सारा जो बहुत बड़े पहाड़ियां है, बहुत बड़े ये है पर्वत जो है, वो कम हो जाएंगे, उनकी हाइट कम हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, जैसे ज्वालामुखी फटेंगे तो ये भी कल्याणकारी है, बिल्कुल कल्याणकारी है। कैसे आगे बताता हूं, तो इसमें भी ये सारी चीजें ऐसे होगी, या ऐसे सुनामीज आएंगे जिसमें बहुत सारा विनाश होगा। इतना ही नहीं, समंदर का जो पानी है वो बहुत सारा इवेपोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, और उसी के द्वारा जितने भी मरे हुए सब जीव जंतु ये सारा है, ये सारा बह के चला जाएगा समंदर में, इतना पानी बरसेगा, क्योंकि सफाया भी होना जरूरी है। तो सारे तत्व जो है सफाया करेंगे, और जैसे आपस में आत्माएं टकराती है, जैसे निगेटिव निगेटिव एनर्जी टकराती है, उसी तरीके से तत्व तत्व से टकराएंगे, जिसको सुनामी क्या है, पानी और जमीन का कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको सुनामी कहा जाता है। तो ऐसे तत्व तत्व से टकरा के भी कुछ हद तक ये हो गए। और कुछ दूसरा है कि बाबा के बच्चों ने जो सेवाएं की है तत्वों की, तो तत्व उससे भी कुछ इसमें पावन हो जाएंगे। तो ये ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया है। इतना ही नहीं, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है फेल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी हमने सैटेलाइट छोड़े हैं उनको रिटर्न आना है। और देखिए, ऐसे दो ऐसे सैटेलाइट्स या बोलिए कुछ यान है जो नासा को पता है कि रिटर्न आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी के पास उन्होंने भेद खोला नहीं है। नासा को बहुत सारी चीजें पता है लेकिन आंसर नहीं उनके पास, क्या बताएंगे। देखिए, लूप कंप्लीट होता है, यहां से छोड़े थे हमने, यहां ही आना है। इसीलिए क्या हुआ, जब मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक हो जाएगा, ये सारे ग्रह, ये जो उपग्रह वगैरह छोड़े वो सारे आके गिरेंगे, और यहां पे डिस्ट्रक्शन होगा, और कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं रहेगा। अंत में बाबा ने बोला है मुरलियों में, कम्युनिकेशन होगा सिर्फ थॉट वेव से, थॉट वेव से। यही तो सतयुग की टेक्नोलॉजी है हमारी। और इतना ही नहीं, ये सारे जो चेंजेस है ये सारे पृथ्वी के लिए सीमित नहीं है। ऐसे स्टॉर्म्स आएंगे, तूफान आएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, कि साला सोलर सिस्टम एक बार रिसेट हो जाएगा। और जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है, गैलेक्सीज और ये सारा बढ़ रहा है, ये सारा एक बार एक जगह पे आके अपने अपने पोजीशन पकड़ लेगा, सारा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक स्टॉर्म आएंगे। वैन एलन बेल्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, उसमें ऐसे स्टॉर्म्स क्रिएट होंगे कि सारे ग्रह तारे अपनी अपनी पोजीशन छोड़ के अपनी जगह पे आ जाएंगे। ये इसमें बताया है कि कैसे घूम के दोबारा वही आता है, वो दिखाया है। और अभी चल रहा है कि इंडिया विल बी द सुपर पावर, बहुत चल रहा है अभी, 2020 में होगा, ये होगा, सब पता है हमें। तो दूसरा कुछ नहीं, इंडिया सुपर पावर ऐसे होगा। आज देखा जाए तो हम एफर्ट्स तो इतना चाइना के इतना तो एफर्ट्स हम ले नहीं रहे, दिन रात तो काम कर नहीं रहे, आज भी आलस्य तो उतना ही है इंडियंस में, तो सुपर पावर बनेगा कैसे। दूसरा कुछ नहीं है, सुपर पावर बनेगा आध्यात्मिक शक्ति से बनेगा, क्योंकि वो जो यूनिवर्स का जो ये देखिए, गोल्डन रियलिटी पेंटिंग करने के लिए आर्टिस्ट आया यूनिवर्स का, वो गोल्डन उसको रियलिटी बना रहा है। तो यही है कि वो बनाएगा, यानी सर्वोच्च आध्यात्मिक शक्ति से ये भारत जो है ये स्वर्ग बनेगा। और ये आपको उसके नजारे देखिए, उसके स्वर्ग के कैसे रहेंगे। अभी देखिए, एक माइंड में बहुत ब्राह्मणों को भी ये आता है क्वेश्चन कि इतना सोना आएगा कहां से, जितने महल बनाएंगे इधर लगाएंगे सब सब सोने का ही रहेगा। तो नेचुरली होगा, ये देखिए साइंटिफिक है, ये जितना भी गोल्ड है सोना दिखता है आपको। बाबा बोलते हैं, एक तो जब खंडों का स्पोर्ट हुआ था उसमें गोल्ड बहुत सारा चला गया आपका, दूसरा है कि लूट के लेके गए, ऊंटों पे भर भर के लेके गए, बाबा मुरलियों में क्लियरली बोलते हैं। तो ऐसा है, तो नेचुरली क्या होगा, जहां से आया था वहां ही जाना है उसको। तो क्या होता है, जब न्यूक्लियर वेपन का यूज होता है तो इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है कि पूरा सोना पिघल जाता है, और सोना पिघल के उसमें जितनी भी अशुद्धि है सारा ये होके पूरा 24 कैरेट प्योर गोल्ड वो आएगा भारत के दिशा में। क्यों? क्योंकि भारत ही खंड बचता है, और सोना तो एकदम हल्का है सबसे, तो हल्का है इसीलिए क्या होता है, वो ऐसे क्षेत्र में आता है जहां पे उसको निकलने के लिए जगह है, क्योंकि सबसे हल्का है वो। और सिर्फ अपोजिट क्षेत्र देखा जाए तो हिमालय थोड़ा उसकी हाइट कम होने से वो क्षेत्र में निकलने के लिए चांस नहीं, वो हाइट पे है, नीचे सिर्फ भारत है। इसीलिए वहां से आता है तो खानियों की खानियां भर जाती है। बाबा बोलते हैं कि इजीली ले पाएंगे और सारे महल सारे बन जाएंगे। उसी तरीके से बाबा बोलते हैं ये बिजली और ये ऐसे लाइट वगैरह नहीं रहेंगे वहां पे, आपके लिए रहेगा जिसमें हीरे लगाएंगे हम। तो हीरे आएंगे कैसे? हीरो का भी ऐसे ही होगा, बहुत सारे हीरे आएंगे जिसमें देखिए, जिसमें ज्वालामुखी फूटने के बाद, ज्वालामुखी निकलने के बाद भारत में उसमें भी कल्याण होगा। देखिए कैसे, उसमें दो तरीके के ये रॉक्स तैयार होंगे जिसमें लिम्पर एक किम्बरलाइट और लिम्प्रोलाइट ऐसे दो तरीके के हैं, जिसमें आपको ये सारे हीरे जो है उसमें पाए जाएंगे। और कुछ हीरो में ऐसी क्षमता है कि जो लाइट देते हैं जिसको फ्लूरोसेंसी कहते हैं, जैसे आज भी हम सीएफएल बल्ब यूज करते हैं तो वो जो है फ्लूरोसेंसी रहेंगे उसमें। तो जहां जहां लगाएंगे वो तो सारा हमें क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो इसलिए ऐसे लाइट वगैरह बिजली पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहेंगे। लेकिन जो हमारे जो ये है एरोप्लेन वगैरह जो यूज करना है सतयुग में, तो उसके लिए सोलर पावर का यूज होगा, क्योंकि पावर के बिना तो कोई चीज चलने वाली नहीं। लेकिन इतनी रिफाइंड टेक्नोलॉजी रहेगी कि संकल्पों के द्वारा चलेगी, संकल्पों के द्वारा। और इसका एक मॉडल बना है नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी यूएसए में, वो साइंटिस्ट लोगों ने खोजा है कि उन्होंने संकल्पों के चलने वाला एक हेलीकॉप्टर बनाया है। तो सेम वही है, अभी सिर्फ सेवा करके ऐसे साइंटिस्ट लोगों को हमारे को लाना है ज्ञान में। अगर ये ज्ञान लेंगे थोड़ा, बाबा से थोड़ा योग लगाएंगे, तो ये भी इनका पार्ट रहेगा सतयुग में, जो हमारे सेवा के लिए आए हैं। ये सब सेवा के लिए ला रहे बाबा हमारे लिए, तो ये भी सेवाएं होनी है और इनका भी भाग्य बनना है। और गायन है सतयुग का, वहां तो वसंत ऋतु रहता है, कैसे रहेगा वसंत ऋतु? तो देखा जाएगा जब पृथ्वी क्या होती है, जीरो डिग्री पे आती है, तो उसका जो जमीन है और पानी जो है सूरज से इक्वली टेम्परेचर मिलता है सूरज का। तो इक्वली अगर 16 डिग्री सेल्सियस, तो 16 डिग्री सेल्सियस पे जमीन भी हीट होगी और पानी भी हीट होगा। इसीलिए क्या होता है, ऐसा ऋतु निर्माण होता है जिसको वसंत ऋतु कहा जाता है। ना तो ज्यादा बरसात, ना तो ज्यादा धूप, तो ना तो ज्यादा ठंडी, तो ये सारा ऐसा वसंत ऋतु बनेगा ये जीरो डिग्री पे आने से। इतना ही नहीं, बाबा बोलते रात में तो आपको 16 जो पूरा चांद रहता है पूर्णिमा का, वो पूर्णिमा का चांद रहेगा जिसमें आपको लाइट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, उसमें तो सारा दिखेगा आपको। क्योंकि जब आत्माएं 16 कला संपन्न बनती है तो चंद्रमा भी सब ग्रह तारे भी अपनी पोजीशन ऐसी सेट कर लेते हैं, वो सुखदाई बनते हैं हमारे लिए। सारी सृष्टि जो है हमारी दासी बन जाती है। तो बाबा जो बोलते हैं एकदम परम सत्य है। तो हमारा क्या रहेगा, जो हमारी राजधानी रहेगी, हम तो दिल्ली बोलते हैं लेकिन बाबा बोलते हैं मुरलियों में परिस्थान। ये परिस्थान रहेगा जो यमुना के कंठे पे, यमुना के कंठे पे बाबा बोलते हैं यहां पे रहेगा। शुरुआत में यहां पे रहेगा 9 लाख पॉपुलेशन, लेकिन जैसे लोकसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, ऐसे ऐसे ये फिर भारत का क्षेत्र लेता जाएगा वो। तो ऐसे बढ़ते जाएगा जैसे जैसे घराने बढ़ेंगे। और अंत में सबसे बड़ा लॉ जो है, आज भी बाबा भी फॉलो करता है, परमात्मा भी जिन लॉज को फॉलो करता है उनको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आज भी एक भी साइंटिस्ट नहीं है दुनिया का जिसने इस लॉज को, किसी ने इसको कोई भी आज तक चैलेंज नहीं कर पाया। ऐसे लॉज कुछ बने हैं जिसको लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। इसमें सबसे बड़ा लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखा जाए तो ये विश्व कैसे बना है, ये विश्व बना है एनर्जी से। एक एनर्जी ऐसी है जिसे बाबा है, वो एक सुप्रीम एनर्जी है, और हम आत्माएं भी एक एनर्जी है, और ये मैटर, ये 5 तत्व 5 एलिमेंट्स, ये क्या बना है, ये भी तो एनर्जी है, 5 एलिमेंट्स, तो ये भी एनर्जी है। और एनर्जी का लॉ बोलता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को तो ना तो निर्माण किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको रूपांतरित कर सकते हैं। तो वही होगा, बाबा भी वही बोलता है, ये नष्ट नहीं होता, ये ट्रांसफॉर्म होता है, बदली होता है। क्योंकि यूनिवर्स को अगर हम इक्वल एनर्जी मानेंगे तो एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन का, एनर्जी का वर्ड निकाल लीजिए, उसमें यूनिवर्स डालिए, तो ऐसा हो जाएगा लॉ, यूनिवर्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। सिर्फ क्या होता है, कलयुग से सतयुग में ट्रांसफॉर्म होता है, मनुष्य जो है देवताएं बन जाती है। तो ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का, कभी ना तो कोई निर्माण कर पाया ना तो नष्ट कर पाया। इसीलिए बाबा बोलते हैं सृष्टि अनादि है। लोग बोलते हैं कि बाइबल में आता है कि पहले दिन उन्होंने ये निर्माण किया पृथ्वी, फिर पानी निर्माण किया, और 6 दिन होने के बाद 7वें दिन रेस्ट ली, जो आज भी हॉलीडे मनाते हैं सत्व। तो लेकिन देखा जाए एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, इसीलिए बाबा बोलते हैं ये अनादि है, ये ऐसे ही चलता आएगा, ऐसे ही चलता रहेगा, इसको ना तो कोई निर्माण किया है ना तो नष्ट होगा। और बाबा ये भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता उससे। बाबा पत्ता हिलाने के लिए नहीं बैठे, पत्ते ऑटोमेटिक हिलते हैं। जब क्या होता है, प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है, जिससे वो विंड आता है, हवा बहती है, उससे पत्ते हिलते हैं। क्योंकि नेचुरली कुछ लॉज है फिजिक्स के, उन लॉज के इसके आधार पे चलता है। और बाबा भी इस लॉज में इंटरफेयर नहीं करता है। और अंत में यही बोलता है कि ये जो है ड्रामा सर्वश्रेष्ठ है। वो भी खुद को बंधायमान कर लेता है तो रचयिता देखे, लेकिन बंधायमान कर देता है, वो भी लॉज में खुद को बाउंड कर देता है। इसीलिए बाबा ये कि अंत में बोलता हूं कि बाबा ने लॉज जो दिए हमारे को, जिसको श्रीमत मुरलियों में आती है श्रीमत, उसको अगर धारण करेंगे तो फिर बाबा जो बोलते हैं ये सारा परिवर्तन, ऐसे ये तो सारी जैसे अभी पता चला हमें, लेकिन सबसे बड़ा तो परिवर्तन हमारा होना जरूरी है। हम परिवर्तन हो गए, बाबा क्यों रुके हैं? हमारे परिवर्तन के लिए। क्योंकि बाबा बोलते हैं आप आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, आप पूर्वज हो, ऐसे ही थोड़ी बोला है। हमारी तपस्या के लिए बाबा रुके हैं, लेकिन बाबा कितना दिन वेट करेंगे, उसकी भी लिमिट है ना। परमात्मा को भी सृष्टि चक्र में यह करना पड़ता है, तो इसकी भी एक लिमिट है, और मेरी भी लिमिट अभी खत्म हो गई। तो अंत में सिर्फ एक ये दिखा देता हूं, ये जो पेपर है बहुत जगह पे सिलेक्ट हुआ है और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है पेपर को, विदेशों में भी बहुत जगह पे सिलेक्ट हुआ है, अमेरिका में भी सिलेक्ट हुआ है, ऐसे अभी तक दो पेपर बनाए हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारे इसमें, और आपको कुछ क्वेरीज वगैरह है तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल एड्रेस आपको देता हूं लास्ट में। एक साइंटिस्ट ने बोला है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, आज जो भी इलेक्ट्रिसिटी में हम देख रहे हैं ये साइंटिस्ट के बदौलत आज देख रहे हैं, जिसने 700 तो पेटेंट उसके लॉन्च हुए, ऐसे पेटेंट्स बनाए कि वो तो कुछ कभी मिले नहीं किसी को। लेकिन उसका एक ही कहना था, आपको अगर यूनिवर्स विश्व को जानना है तो थिंक ऑफ एनर्जी, पहले तो खुद को समझो कि मैं एक एनर्जी हूं, और क्या करो दूसरा है कि कनेक्ट विद दैट एनर्जी, अनदर एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी ट्यून करो दूसरे एनर्जी से। तो बाबा क्या है, परमात्मा भी एक ही एनर्जी है, हाईएस्ट अल्ट्रा एनर्जी, उससे क्या करो ट्यूनिंग करो, फ्रीक्वेंसी जुड़ो, तब जाके क्या होगा, तब जाके ये वाइब्रेशंस जब हम फील करते हैं योग में, वो क्या है, दूसरा वाइब्रेशन ही तो है। तो वही साइंटिस्ट ने बताया था, और उसने एक स्टेटमेंट और भी दिया कि हमें जो भी प्रेरणा आती है, जो भी हमें शक्ति मिलती है, जो भी नॉलेज मिलता है, उसका एक कोर है, उसका एक सोर्स है। लेकिन वो बोलता था कि मेरे को कहां से आता है ये पता नहीं, लेकिन एक सोर्स है, उसको कोर बोलता था, जो बाबा बोलते हैं परम धाम से सारा आता है, बाबा से आता है इंस्पिरेशन हर एक को। तो ये ऐसी चीज है, और सारा संसार ढूंढ रहा है कि गॉड्स पार्टिकल है कहां, साइंटिस्ट लोग ढूंढ रहे हैं सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा, जिसको हिग्स बोसान कहते हैं वो, और इमेजिनरी बोल दिया है, लेकिन बाबा के बच्चों को है कि वो पार्टिकल बाबा का है। और वो कॉस्मिक रेज वो भी आज अभी भी हर एक जगह पे है, कॉस्मिक रेज, और आज भी अभी भी हम जब योग में बैठते हैं तो कॉस्मिक रेज ही तो लेते हैं। और इतना ही नहीं, जब अज्ञानी लोग सोते हैं तो क्या होता है, जब माइंड, जब सोल डिटैच हो जाता है बॉडी से, तो बाबा की किरणें उनको भी मिलते हैं, उनको भी मिलते हैं, और इसीलिए दूसरा दिन उसका अच्छा चलता है। अगर वो किरणें नहीं मिलेंगे तो आत्मा रह ही नहीं पाएगी, ये हो जाएगी। तो बाबा बोलते हैं तुम्हारी योगियों की नींद क्यों कम होना चाहिए, क्योंकि अगर सच्चा योग लगाया है तो नींद बिल्कुल कम होना ही है, क्योंकि आपने जो नींद में कॉस्मिक रेज लेना था वो पहले योग में ले लिए, तो अभी लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए नींद कम नहीं है, इसका मतलब है हमारा योग पावरफुल नहीं है, बिल्कुल यस, इससे प्रूव होता है। तो ये बहुत सारा ये है, और बाद में उनको ये भी बताया कि ये ऐसे फैक्ट्रीज है जहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हेल विल बी कन्वर्टेड इनटू हेवन, जो ये नर्क बन चुके हैं संसार, ये स्वर्ग बनता है। और ये माउंट अबू राजस्थान ऐसा क्षेत्र है जहां पे फैक्ट्रीज है, नर्क को स्वर्ग बनाने की फैक्ट्रीज है ये। और इसका जो गायन आता है जिसको दिलवाड़ा टेम्पल, ये स्वर्ग का मॉडल है, कैसे स्वर्ग फॉर्म होता है ये भी इसमें बताया गया है। और ये बहुत सारे सेंटर्स है, और लास्ट में भगवद गीता का एक ही सेंटेंस, जितना भी अभी आप तो आपको बताया है एक ही शब्द में बोलता हूं, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। आप इस पे अगर विश्वास रखेंगे तो आपकी जीत होगी, और अविश्वास रखेंगे तो आपकी हार होगी। ये भगवद गीता के महावाक्य है। तो ये शांति का संदेश सारे संसार के लिए, क्योंकि भारत ने ही सारे संसार को शांति का संदेश दिया है और देता रहेगा युगो युगो तक। तो ये शांति का संदेश है सारे संसार के लिए, कि कुछ हम इसका जो न्यूक्लियर वार से जो नुकसान होगा इसको हम कुछ हद तक कम कर सकते हैं, तो ये सारे संसार में इंटरनेशनल लेवल पे इसमें होना जरूरी है। और ये लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, किसी को भी अगर चाहिए तो जरूर वो नोट कर लीजिए, और किसी को भी कोई पूछना है तो जरूर कभी भी, ये आपके लिए हेल्पलाइन है जो 24 आवर्स दिन में 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन चलती रहती है। कभी भी आप फोन कीजिए, कभी भी पूछिए, तो आपको जरूर जितना बाबा ने समझाया है और जितना कुछ दिया है जरूर आपसे शेयर करेंगे। और आप सब सबका धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद वो परमात्मा शक्ति का जो मुझ जैसे आत्मा को यहाँ पे बाबा ने लाया है, क्योंकि ना तो कुछ बैकग्राउंड है ना तो कुछ है, एक जीरो से बाबा ने ये स्टेज पे पहला मौका दिया है मधुबन में बोलने का। उस परमात्मा शक्ति के, उस बाप दादा के, सब आदि रत्नों के बहुत बहुत धन्यवाद कि वो शक्ति ने यहां तक लाया है। और अगर चाहेगा बाबा तो और भी बाकी के सेवाएं जरूर करवा लेंगे। और आप सब ब्राह्मणों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है, चाहे संसार की कितनी भी विधियां रहने दो, वो बिना ब्राह्मण के सारा अधूरा है। तो आप ब्राह्मणों के हरेक का आशीर्वाद जब रहेगा तो जरूर जरूर ये काम होगा, और सारे साइंटिस्ट जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट बाबा के बच्चे बन जाएंगे और बाबा के सेवाओं में मददगार बनेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सबने इतना अच्छा सुना इतने देर तक, बहुत अलग विषय है लेकिन इतने दिल से आपने सुना, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और सबका जिन्होंने आयोजन किया, इतने इसमें कठिनाई में चांस दिया, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और अंत में एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड, हम ऐसा योग करेंगे जो 10 डायमेंशन में बाबा बैठा है परमधाम में, हम 9 डायमेंशन में बाबा, ब्रह्मा बाबा के पास जाके ऐसा योग करेंगे एक सेकंड के लिए। और वो सेकंड में एक ही संकल्प करना है कि जो भी निगेटिविटी है मेरी, वो वहां के वहां मैं स्वाहा कर दूंगा। और एक भी निगेटिव संकल्प अभी बीच में एक भी मत लाइए, बिल्कुल एक ही, कि मैं परम धाम में हूं, बाबा के 10वें डायमेंशन में बाबा है, एकदम ब्रह्मा जहां पे है उसके नीचे मैं हूं, एक बाबा, दूसरा मैं, तीसरा न कोई, पूरा परम धाम खाली है और पूरी एनर्जी बाबा से आ रही है और पूरा आत्मा जो है सतो प्रधान बन रही है। एक सेकंड के लिए।
ओम शांति। विज्ञान के द्वारा बाबा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष करने का सराहनीय कदम आपका देखकर हम सभी ब्राह्मण भाई बहनों को बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाए और बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो कार्य है वो करते जाए, यही हम सबकी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। ओम शांति।